भागवत सार की श्रृंखला में सातवें स्कंद के नवे अध्याय पर चर्चा जारी रहेगी। डू समथिंग अबाउट इट व्हेन यू हियरिंग इट। कृपया इसको दोहराइए, एक श्लोक इसको पढ़िए, बोर्ड पर है इसको दोहराइए।
सोहं प्रियस्य सुहृदः परदेवताय लीला कथास्तव नृसिंह विरिञ्च गीतः। अञ्जस्ति कर्णनुगुण गुणवी प्रमुक्तो दुर्गानि ते पदयुगालय हंस संगः। सोहं प्रियस्य सुहृदः परदेवताय लीला कथास्तव नृसिंह विचिन्त गीत। अञ्जस्ति कर्ण्यनुगुणं गुणवी प्रमुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगालय हंस संगः। सोऽहं प्रियस्य सुहृदः परदेवताय लीला कथास्तव नृसिंह विरिञ्च गीताः। अञ्जस्ति तर्म्यनुगुणं गुणवी प्रमुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगालय हंस संगः। सुहृदः परदेवताय
प्रियस्य अत्यंत प्रिय की सुहृदः शुभचिंतक परदेवताया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का लीला कथा, लीलाएं या कथाएं तब आपकी नृसिंह हे नृसिंहदेव विरिंच गीता शिष्य परंपरा से ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त अंजह सरलता से तितरमी पार कर लूंगा अनुग्रणन निरंतर वर्णन करते हुए गुण प्रकृति के गुणों से विप्रमुक्त विशेषतया अदूषित होने से दुर्गाणी जीवन की समस्त दुखमय परिस्थितियां ते आपके पदयुग आलय चरण कमलों में लीन हंस संगह हंसों अर्थात मुक्त आत्माओं की संगति पाकर ऐसे व्यक्ति जिनका भौतिक कार्यों से कोई संबंध नहीं है। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हे भगवान नृसिंहदेव, मुक्त आत्माओं की संगति में आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहकर मैं प्रकृति के तीन गुणों के स्पर्श से पूर्णतः कल्मषहीन हो सकूंगा और आपकी महिमाओं का कीर्तन कर सकूंगा जो मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मैं ब्रह्मा तथा उनके शिष्य परंपरा के पद चिन्हों पर ठीक तरह से चलकर आपकी महिमाओं का कीर्तन करूंगा। इस प्रकार मैं अज्ञान के सागर को निश्चय ही पार कर सकूंगा। तात्पर्य, इस श्लोक में भक्त के जीवन तथा कर्तव्य की भली भांति व्याख्या की गई है। ज्यों ही भक्त परमेश्वर के पवित्र नाम तथा उनके यश का कीर्तन कर सकता है वह निश्चय ही मुक्ति पद पर पहुंच जाता है। भगवान के पवित्र नाम तथा कार्यकलापों के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति अनुराग होने से श्रवणम कीर्तनम विष्णुः, मनुष्य को ऐसी स्थिति प्राप्त होती है जहां भौतिक कल्मश नहीं होता। मनुष्य को शिष्य परंपरा से प्राप्त प्रामाणिक भजनों का कीर्तन करना चाहिए। भगवद गीता में कहा गया है कि शिष्य परंपरा के पालन से कीर्तन शक्तिशाली बनता है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषे विदुः। कीर्तन की अनेक विधियां बनाने से कोई प्रभाव नहीं होगा, किंतु पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा छोड़े गए भजन या कथा का कीर्तन महाजनो येन गतः स पंथा अत्यंत प्रभावशाली होता है और यह विधि सरल भी है। इसलिए इस श्लोक में प्रह्लाद महाराज अंजह सरलता से शब्द का प्रयोग करते हैं। शिष्य परंपरा से प्राप्त महापुरुषों के विचारों को स्वीकार करना निश्चय ही उस शुष्क चिंतन विधि से सरल होगा जिसके द्वारा मनुष्य परम सत्य को समझने के लिए कोई न कोई साधन ढूंढने का प्रयत्न करता है। सर्वोत्तम विधि यही है कि पूर्ववर्ती आचार्यों के उपदेशों को स्वीकार करके उनका पालन किया जाए, तब ईश साक्षात्कार तथा आत्म साक्षात्कार अत्यंत सरल हो जाएंगे। इस सरल विधि के पालन से मनुष्य प्रकृति के भौतिक गुणों के कलमश से मुक्त हो जाता है और अज्ञान के सागर को पार कर सकता है जो अनेक कष्टदायक परिस्थितियों से पूर्ण है। महान आचार्यों के पदचिन्हों पर चलकर मनुष्य हंसों या परम हंसों की संगति प्राप्त करता है जो भौतिक कलमश अनेक कष्टदायक परिस्थितियों से पूर्णतः मुक्त है। निसंदेह आचार्यों के उपदेशों का पालन करके मनुष्य सदा से सारे भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और इस तरह उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि वह जीवन लक्ष्य तक पहुंच जाता है। यह भौतिक जगत दुखमय है, चाहे किसी का जीवन स्तर कैसा ही क्यों ना हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भौतिक विधियों द्वारा संसार के दुखों को कम करने के सारे उपाय असफल होंगे। वास्तविक रूप में सुखी होने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, अन्यथा सुख मिलना असंभव है। कोई ये कह सकता है कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए तपस्या करनी होती है, अर्थात स्वेच्छा से असुविधा को स्वीकार करना होता है, किंतु इस तरह की असुविधा उतनी घातक नहीं है जितनी कि सारे दुखों को कम करने के भौतिक प्रयास। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।
सर्वशास्त्राधिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते। मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तुते। असाधु साधु तदाई अतिनीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मा प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुरा।
प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। कल हम लोग सुन चुके हैं, प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना प्रारंभ की, अपने को अयोग्य कहा कि मेरी कोई योग्यता नहीं है, ये जो सारे देवता हैं ब्रह्मा इत्यादि ये तो बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन मेरी योग्यता कोई नहीं है, फिर भी इनके कहने पर मैं आया हूं। और आगे वो बताते हैं अपनी प्रार्थनाओं में भगवान से कि कैसे भगवान उन पर कृपा करें, अपना क्रोध शांत करें इत्यादि। और फिर वो प्रार्थनाएं करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि प्रार्थना करने से हृदय शुद्ध होता है। प्रार्थनाओं को प्रारंभ करते हैं, भगवान से कहते हैं कि मुझे आपके इस रूप से कोई भय नहीं है, मुझे तो भय है कि अगर मुझे भक्तों का संग चला जाए, असत संग प्राप्त होगा, उसका मुझे भय है, भौतिक बंधन का भय है, कृपया मुझे उससे बचाइए। तो अब आगे वो प्रार्थनाओं को कह रहे हैं, जैसे श्लोक में हम पढ़ रहे हैं कि वो कहते हैं कि जीव को सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा ही एकमात्र उपाय है गुणों के परे जाने का। और जब व्यक्ति गुणों के परे चला जाएगा तो जैसे यहां इस श्लोक में वो कह रहे हैं कि फिर मैं आपका गुणगान कर सकूंगा बड़ी अच्छी तरह से और तब मैं मुक्त हो सकूंगा, इस भौतिक जगत को पार कर सकूंगा। तो ये जगत क्या है, तीन गुणों से बंधा हुआ है या बना हुआ है। और इस जगत को पार करना मतलब गुणों को पार करना। भगवद गीता में भगवान कहते हैं सगुणान समतीतैत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति इन तीन गुणों को पार कर जाता है, और कैसे पार करता है, भगवान कहते हैं माम च योग्य विचारेण भक्ति योगे न सेवते, कि इन गुणों को पार करने के लिए एक ही उपाय है। क्या है, माम च यो अव्यभिचारेण, जो व्यक्ति मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति में लगता है, अव्यभिचारेण भक्ति योगे न सेवते, सेवा करता है। तो भगवान ने बहुत स्पष्ट कहा उसी बात को प्रहलाद महाराज यहां कह रहे कि सेवा के बिना शुद्ध गुणों को पार नहीं कर सकते। तो भगवान भी वही कहते हैं भगवद गीता में सगुणान समति दैत्यान, गुणों को अगर पार करना है तो क्या करना है, भक्ति अव्यभिचारिणी। अव्यभिचारिणी का अर्थ क्या है, व्यभिचारिणी ये शब्द साधारणतः ऐसी स्त्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो सामाजिक नियमों का पालन ना करे, व्यभिचार में लगे। व्यभिचार मतलब शास्त्रों के विरुद्ध कार्य, गलत पुरुष से संग करना या अपने पति के अलावा किसी और पुरुष से संग करना, या पुरुष ऐसा कार्य करे पत्नी के अलावा किसी और स्त्री के साथ संग करे, अवैध संग करे, उसको व्यभिचार कहते हैं। और व्यभिचारिणी मतलब ऐसी स्त्री जो व्यभिचार में लगी है, जो गलत कार्य में लगी है, अर्थात अपने पति को छोड़कर किसी और पुरुष के साथ वो संग कर रही है, उसको व्यभिचार भी कहते हैं। तो जब भगवान भगवद गीता में कहते हैं माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो अव्यभिचारी भक्ति करते हैं, अव्यभिचारी मतलब जो कृष्ण को छोड़कर अगर किसी और की भक्ति करते हैं, किसी और को परम मानते हैं, किसी और की शरण जाते हैं, वो व्यभिचार है। जिस तरह एक पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर अगर किसी और दूसरी स्त्री के साथ संग करता है उसको व्यभिचार कहते हैं, इसी तरह अगर एक भक्त श्री कृष्ण की शरण छोड़कर श्री कृष्ण को परम ना मानते हुए किसी और देवी देवता या किसी और अन्य पुरुष, किसी और व्यक्ति, किसी और जीव की शरण ग्रहण करता है, वो व्यभिचार है। और अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है, अव्यभिचारिणी भक्ति वो है जहां कृष्ण के अलावा किसी और के शरण नहीं जाया जाता, कृष्ण को ही परम माना जाता है, केवल कृष्ण की भक्ति, अनन्य भक्ति। अनन्य मतलब कोई अन्य व्यक्ति नहीं, एक ही ईश्वर केवल कृष्ण और सभी दास, इस भाव में जब भक्ति की जाती है उसको अव्यभिचारिणी कहते हैं। और ऐसी भक्ति भगवान कहते माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगे न सेवते, ऐसी भक्ति के द्वारा जो मेरी सेवा करता है सगुणान समति तैत्यान, वो सारे गुणों से परे, ये जो तीन गुण है भौतिक जगत के, इन तीनों गुणों के परे चला जाता है और क्या प्राप्त करता है, ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करता है। और ब्रह्म अवस्था क्या है वो भी भगवान बताते हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिं लभते पराम। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म अवस्था क्या है, जहां व्यक्ति किसी चीज के लिए शोक नहीं करता, न शोचति न कांक्षति, न कोई इच्छा करता। भौतिक जगत में हम लोग इन्हीं दो चीजों में फंसे हैं, इच्छा करते हैं कि कुछ प्राप्त हो जाए, जब नहीं मिलता तो शोक करते हैं, बस यही दो चीजें हैं। तो ब्रह्म अवस्था क्या है? ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो क्या है? न शोचती न कांक्षती। और उस अवस्था में क्या होता है? सम सर्वेश भूतेषु, सभी जीव समान लगते हैं। मद भक्तिम लभते परा, तब वो भक्ति कर पाता है। तो इसीलिए भगवान को ही परम मानकर भक्ति करनी चाहिए। प्रहलाद महाराज यही कह रहे हैं कि इस तरह की जब भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं भगवान की, तब गुणों के परे जाते हैं। और गुणों के परे जाकर क्या करना है? भगवान का गुणगान। भगवान का गुणगान करेंगे तब फिर हम इस जगत को पार कर सकते हैं। तो ऐसे प्रहलाद महाराज बताते हैं। और जब उन्होंने ऐसे प्रार्थना की कि केवल आपकी सेवा से, आपकी शक्ति से, आपकी कृपा से जीव पार कर सकता है, तो उसका उदाहरण भी देते हैं कि कहीं लोगों के मन में ये नहीं आ जाए कि अरे हमारे अंदर, आत्मा के अंदर भी तो शक्ति है, क्या आत्मा कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ भगवान करेंगे। आई थिंक द साउंड इज वेरी हाई, रिड्यूस इट फर्दर। तो क्या भगवान ही सब कुछ करेंगे, आत्मा कुछ नहीं करते हैं? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये जो आत्मा है, ये जो आत्मा है, ये कुछ नहीं कर सकती। देखिए आत्मा की स्थिति को बता रहे हैं प्रहलाद महाराज। हम लोग तो कभी कभी सोचते हैं ना कि ठीक है शरीर भौतिक है लेकिन आत्मा आध्यात्मिक है, आत्मा में बड़ी शक्ति है, आत्मा में गुण हैं, भगवान के ही गुण हैं, आत्मा सच्चिद आनंद है, ज्ञान से परिपूर्ण है, शाश्वत है, आनंद में है, ये सत्य है। एक प्रहलाद महाराज कहते आत्मा कुछ कर नहीं सकती। जब तक इस भौतिक जगत में बद्ध है जीव कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वो तीन उदाहरण देते हैं, माता पिता का उदाहरण, डॉक्टर का उदाहरण और एक नाव का उदाहरण। वो कहते हैं कि माता पिता बहुत प्रयास करते हैं अपनी संतान को बचाने का लेकिन बचा नहीं पाते। और ये हम लोग देखते हैं जगत में, कोई बीमार हो जाता है, बड़ा प्रयास किया जाता है, उसको सारा धन लगाया जाता है अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में, लेकिन बच्चा मर जाता है, लड़का मर जाता है, कुछ भी कर लीजिए। तो प्रहलाद महाराज कहते कि अगर मां बाप पे रक्षा करने की शक्ति हो तो वो अपने बच्चे की रक्षा कर सकते, क्यों नहीं करते? फिर बच्चे क्यों मरते हैं? तो वो कहते क्यों? क्योंकि वो रक्षा केवल श्री कृष्ण कर सकते हैं, माता पिता तो माध्यम है। दूसरा उदाहरण वो एक चिकित्सक का देते हैं, एक वैद्य का, डॉक्टर का देते हैं कि वो बड़ा प्रयास करता है किसी को बचाने का, अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, जितना उसके अंदर क्षमता है सब करता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति मर जाता है। सारी सुविधा होते हुए आजकल तो हम लोगों ने आध्यात्मिक सुविधाओं को त्याग कर भौतिक सुविधाओं को बहुत बढ़ा लिया, तो ये जो चिकित्सा की सुविधा है बहुत बढ़ गई है। आजकल ऐसे ऐसे मशीनें आ गई हैं, आपके शरीर में अंदर क्या चल रहा है वो ऐसे ही बाहर से सब देखकर बता देते हैं। और बहुत सारे क्रिया या चिकित्सा करने की बहुत सारी क्रियाएं आ गई हैं नई नई, बहुत कुछ बढ़ गया है, लेकिन क्या लोगों का मरना रुक गया? सारी चिकित्सा से, सारे हॉस्पिटल से, कितने हॉस्पिटल खुल रहे हैं? दरअसल अगर बुद्धिमानी है हमारे अंदर तो हमें एक चीज सोचनी चाहिए कि अगर चिकित्सा व्यक्ति को बचा सकती है, कम कर सकती है उसके रोग को, तो इतने सारे हॉस्पिटल क्यों खुल रहे हैं? हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं क्योंकि बीमारों की संख्या बढ़ती जा रही है। हम कह रहे हैं कि हमने बड़ी प्रगति कर ली, हमने मेडिकल साइंस में बहुत प्रगति कर ली, हमने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया, उस बीमारी का ढूंढ लिया, बीमार तो बढ़ते जा रहे हैं। आप जितने भी हॉस्पिटल खोल दीजिए सब भरे रहते, कोई हॉस्पिटल खाली नहीं है। बीमारों की संख्या बढ़ती जा रही है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, नई नई बीमारियां आती हैं, फिर कहा जाता है इसका कोई उपाय नहीं, कैंसर कोई उपाय नहीं, और ऐसी बहुत सी बीमारियां कोई उपाय नहीं, व्यक्ति को मरना ही है।
तो अगर डॉक्टर है उसके अंदर क्षमता है तो क्यों नहीं बचा लेता मरते हुए व्यक्ति को। प्रहलाद महाराज कहते हैं डॉक्टर में कोई क्षमता नहीं, क्षमता भगवान की। और जिस व्यक्ति को डॉक्टर बचाता भी है वो अपनी कला से नहीं, अपने ज्ञान से नहीं, भगवान की कृपा से बचाता। और तीसरा उदाहरण नाव का देते हैं कि नाव जब समुद्र में जाती है और अगर कोई डूब रहा हो, सामने नाव हो तो भी नाव बचा नहीं पाती। कई बार ऐसा होता है व्यक्ति डूब रहा है, सामने नाव है, नहीं बच पाती। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण टाइटैनिक का है। टाइटैनिक जहाज बनाया, बहुत बड़ा जहाज, जब डूब रहा था तो उसमें से जो बोट थी, लाइफ की बोट, वो सब नीचे उतारी गई। तो उस समय बहुत लोग मर रहे हैं सामने, और बोट सामने थी, बचा नहीं पाए उन लोगों को। वो बोट्स बनी थी बचाने के लिए, उसको लाइफ सेविंग बोट कहते हैं, यानी कि जीवन बचाने वाली नाव। और वो सामने थी, कई नाव थी, लेकिन कई लोग सामने मर गए, कोई बचा नहीं पाया। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये भगवान आप करते हो, हमारी कोई शक्ति नहीं है कि हम बचा पाए, क्योंकि सब कुछ, ये जो जगत है, ये सारा आपकी शक्ति का रूपांतरण है। व्यक्ति जो कार्य करता है, जिस स्थान पे कार्य करता है, जिस उद्देश्य के लिए कार्य करता है, जो भी चीजें हैं वो सब आपकी शक्ति का रूपांतरण है। और आप अपनी शक्ति से अलग नहीं हैं, इसीलिए जो कुछ है वो आप हैं। जैसे हम लोग अभी जिस स्थान पर बैठे हुए हैं वो भी भगवान की शक्ति का रूपांतरण है। और क्योंकि भगवान और उनकी शक्ति में अंतर नहीं है, इसीलिए हम भगवान के ऊपर बैठे हुए हैं। ये प्रहलाद महाराज कहे कि कोई भेद नहीं है। ये एक शुद्ध भक्त की दृष्टि है कि वह सर्वत्र भगवान को देखता है। तो वो अगर शक्तियां देख रहा है तो देख रहे हैं भगवान की शक्ति, लेकिन उनमें भेद नहीं है, इसीलिए आप ही शक्ति और आप में कोई भेद नहीं है। और वो कहते हैं कि इस जगत में जीव बहुत इच्छाएं करता है और इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत से कर्म कांड में लगता है, लेकिन उसको कोई आनंद नहीं मिलता, क्योंकि उन कर्म कांडों से वो मुक्त नहीं हो सकता। मुक्ति केवल आपकी शरण में आकर मिलती है, इसीलिए हमें आपकी शरण लेनी चाहिए। कम से कम जब शरण लेने के लिए कहा जाए तो आंखें खुली रखनी चाहिए। शरण क्या लेंगे हम लोग, जब सुनते ही आंखें बंद हो जाती हैं। तो शरण लेनी चाहिए आपकी, नहीं तो व्यक्ति कर्मकांड करते करते कष्ट सहता है। मुझे देखिए, प्रहलाद महाराज कहते हैं, मुझे देखिए, ये जो समय है ये मुझे खत्म कर रहा है, नाश कर रहा है। आपसे प्रार्थना है कि आप अपने चरण कमलों में मुझे आश्रय दीजिए। तो मानो भगवान ने पूछा हो कि अरे मेरे चरण कमल क्यों चाहिए, अगर तुम्हें तकलीफ है तुम स्वर्ग लोकों में चले जाओ, बहुत लंबा जीवन होगा, आनंद मिलेगा। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि स्वर्ग लोकों में जाने से जो आनंद मिलता है, लंबी उम्र मिलती है, आनंद मिलता है, लेकिन मैंने देख लिया मेरे पिता इतने शक्तिशाली थे कि जब उनकी भ्रुकुटी हिलती थी तो सारे देवता कांप जाते थे। क्या नहीं था उनके पास, लेकिन उनको तो आपने एक क्षण में समाप्त कर दिया। अगर ये भौतिक आनंद लेने के लिए हम इतना प्रयास करें, लेकिन मैंने तो देखा कि जिस व्यक्ति के पास इस जगत का सारा आनंद था, आप सोचिए कर्मकांड करके व्यक्ति स्वर्ग जाने की कामना करता है और वहां पर कुछ समय रहकर आनंद लेने की कामना। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं भागवत में, अन्य पुराणों में स्वर्ग का वर्णन, आनंद ही आनंद है, अप्सराएं हैं, नंदन कानन वन है, खाने की कमी नहीं है, पीने की कमी नहीं है, सुरा अपना नदियां बहती हैं, आपको अगर कुछ पीना है, नशे में होना है, जाइए नदी में से निकालिए, पीजिए, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। तो ऐसे स्वर्ग की बातें सुनते हैं तो लगता है कि जाना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते मेरे पिता इन सब के स्वामी हो गए थे, देवता घबराते थे उनसे, लेकिन आपने उनको एक क्षण में खत्म कर दिया। तो ऐसे ऐश्वर्य को, ऐसे आनंद को लेकर मैं क्या करूं, मुझे ऐसा आनंद नहीं चाहिए जो आपने मेरे पिता को दिया था। तो मुझे क्या चाहिए, वो कहते हैं कि मुझे तो केवल आपके शुद्ध भक्तों की संगति चाहिए, आप मुझे आपके शुद्ध भक्तों के साथ रखिए, मुझे उनकी सेवा का अवसर दीजिए और कोई चीज मैं आपसे नहीं मांगता, बस इतना ही। मैं तो यही चाहता, शुद्ध भक्तों के संग में रहूं, उनकी सेवा करूं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम बाकी चीजें कृष्ण से ना मांगे, हमें केवल यही मांगनी चाहिए कि आपकी सेवा में रहूं, आपके भक्तों की सेवा करता रहूं, बस। तब भृत्य 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 भृतस्य भृत्य, राजा कुलशेखर कहते मैं क्या बनना चाहता हूं, आपके दास 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 दासों का दास। ये कामना भक्तों की होती, कभी वो नहीं कहते कि थोड़ा आपके साथ सिंहासन पर बैठना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कैसा लगता है भगवान बन के, नहीं, आपके दासों के दासों का दास बनना चाहता। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं बस मुझे यही है कि मुझे भक्तों का शुद्ध भक्तों की संगति मिले और मैं आपकी उनकी हमेशा सेवा कर सकूं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं ये इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि मैं बहुत बहुत निम्न अवस्था में हूं, बड़ा तुच्छ हूं, मेरा जन्म किस में हुआ, ऐसे स्थान में जो तमोगुण से भरा हुआ था, लेकिन आपकी कृपा देखिए, आपने मेरे ऊपर वो कृपा की है जो आपने ब्रह्मा जी पर नहीं की, शिव जी पर नहीं की आज तक, लक्ष्मी देवी पर नहीं की आज तक आपने, वो कृपा मेरे ऊपर की है आपने, अपना हाथ मेरे सर पर रखा, ये कभी किसी के नहीं किया भगवान ने। देखिए कितने आश्चर्य की बात है, लक्ष्मी देवी भगवान की सेवा करती है लेकिन भगवान ने कभी सर पर हाथ नहीं रखा उनके, शिव जी के सर पर हाथ नहीं रखा, ब्रह्मा जी के सर पर हाथ नहीं, ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया भगवान ने। भागवत में वर्णन आता कि जब ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए भगवान सृष्टि के समय, तो ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया, ब्रह्मा जी कैसे हो, जैसे हम लोग मिलाते ना हाथ, हाउ डू यू डू, ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया भगवान ने लेकिन ब्रह्मा जी के सर पर हाथ नहीं रखा। तो प्रहलाद महाराज कहते ये आपने कभी नहीं किया, केवल मुझे किया है, ये आपकी कृपा। तो इसके द्वारा प्रहलाद महाराज क्या बता रहे हैं, क्या वो ये बता रहे हैं कि मैं कितना श्रेष्ठ हो गया हूं, ये आपने जो ब्रह्मा को नहीं दिया, शिव जी को नहीं दिया, लक्ष्मी को नहीं दिया, मुझे दे दिया, क्या ये अहंकार से बोल रहे हैं? नहीं, इसीलिए उन्होंने पहले कहा कि मेरा जन्म तो बड़ा निम्न कुल में हुआ, निम्न अवस्था, तमोगुण से भरा हुआ, रजोगुण से भरा हुआ वातावरण में मैं पला हूं। तो ये दोनों बातें बताकर क्या कह रहे हैं प्रहलाद महाराज, हमें ये सिखलाना चाहते हैं कि भगवान की अहेतु की कृपा किसी पर भी हो सकती है, इसीलिए वो अहेतु की है, जिसका कोई हेतु नहीं है, किसी भी अवस्था में व्यक्ति भक्ति कर सकता है, निम्न से निम्न व्यक्ति, निम्न कुल में जन्मा, पापी, अधर्मी, हत्यारा, सब भक्ति कर सकते हैं। रत्नाकर डाकू ने भक्ति की, वो तो हत्यारे थे, मारते थे लोगों को, जब नारद मुनि ने उनसे कहा राम बोलो तो उनके मुख से राम नहीं निकला, तो फिर नारद मुनि ने कहा तुम मरा ही बोलो, क्योंकि तुम सबको मारते हो और जब कहे जो कोई मरता था तो तुम चिल्लाते थे ये मरा वो मरा, तो नारद मुनि ने कहा तुम मरा मरा करते रहो, राम मत बोलो, अपने आप भक्ति हो जाएगी। तो उन्होंने मरा 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 करना शुरू किया, राम 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 हो गया। तो ऐसे भी तो ये प्रहलाद महाराज समझा रहे हैं कि किसी भी अवस्था में भक्ति की जा सकती है, ये नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति के लिए तो बड़ा अच्छा स्थिति होनी चाहिए, भगवान की कृपा किसी पर भी हो सकती, कोई भी भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है अगर भागवत क्लास में आंखें खोलकर बैठे तो। तो इस तरह प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं तो बहुत इस अवस्था में हूं, आपने मेरे ऊपर कृपा की है, हालांकि आप सबके लिए समान हैं। मानो ये प्रश्न आ जाए कि प्रहलाद पर विशेष कृपा कर दी तो क्या भगवान समान नहीं है सबके लिए? प्रहलाद महाराज कहते हैं आप सबके लिए समान हैं, लेकिन फिर भी आप अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, क्यों? तो फिर ये समानता कैसे हुई? ये प्रश्न आता है ना, हम लोग कई बार ये देख चुके हैं, सुन चुके हैं कि भगवान समान है, समो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः, मैं सबके लिए समान हूं, किसी से द्वेष नहीं, कोई मेरा प्रिय नहीं, फिर भक्तों पर कृपा क्यों करते हैं? उन्हें तो सब पर करनी चाहिए, तो भक्तों पर विशेष कृपा क्यों करते हैं? तो प्रहलाद महाराज इसका उत्तर देते हैं अपनी प्रार्थनाओं में। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हालांकि भगवान आप समान हैं, लेकिन जीव की सेवा के अनुसार आप उसको वरदान देते हैं, जैसा जो सेवा करता है उसके अनुसार। तो क्या ये गलत है? वो कहते हैं बिल्कुल गलत नहीं है। जैसे कल्प वृक्ष होता है, तो कल्प वृक्ष के पास जाकर जो जीव इच्छा करता है कल्प वृक्ष वही देता है, उसमें गलती क्या है? जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि एक व्यक्ति एक बार कल्प वृक्ष ढूंढने गया कि मुझे कल्प वृक्ष चाहिए, ढूंढते ढूंढते बहुत किसी ने कहा था चले जाओ वहां मिलेगा, बहुत ढूंढता रहा नहीं मिला, अंत में एक वृक्ष के नीचे थक कर बैठ गया, पसीना पसीना, भूख लग रही, प्यास लग रही, तो उसने सोचा कि काश कुछ खाने के लिए आ जाए, मिल जाए, इतने भूख प्यास के अचानक सब आ गया खाने के लिए, अरे बहुत आश्चर्य, कहां से भगवान ने भेज दी, खा लिया। अब खा लिया तो नींद आ रही, तो सोच रहे कि मैं थोड़ा बिस्तर वगैरह होता सो जाता, तुरंत बिस्तर आ गया, अरे वाह बहुत आनंद। तो सुंदर था, लेकिन सोते सोने से पहले सोचने लगा कि मैं सो तो रहा हूं इस वृक्ष के नीचे, लेकिन ऐसा तो नहीं कि अचानक शेर आ जाएगा और मुझे खा जाएगा। अब शेर आ गया और खा गया। कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था, उसको समझ नहीं आया कि जब उसने भोजन मांगा तो भोजन प्रकट हो गया, जब उसने बिस्तर मांगा तो बिस्तर प्रकट हो गया, तो कल्प वृक्ष के नीचे था, भूल गए। तो जो इच्छा करते हैं कल्प वृक्ष से वही दिया जाता है, उसमें कल्प वृक्ष की क्या गलती है? जब उसने भोजन मांगा तो भोजन दिया, जब उसने मृत्यु मांगी तो मृत्यु दी। इसी तरह हे कृष्ण, हे नरसिंह देव, प्रहलाद महाराज कहते हैं आप सबके लिए समान है, जो जैसी सेवा करता है, कोई आपको हृदय से प्रेम से सेवा करके आपकी भक्ति मांगता है आप उसको भक्ति देते हैं, कोई आपके पास आकर जहर मांगता है, भौतिक आनंद मांगता है, उसको आनंद देते हैं, क्योंकि उसकी इच्छा ही वही है, वो लेना ही नहीं चाहता कुछ और, तो इसीलिए आप समान हैं। तो ऐसे प्रहलाद महाराज भगवान को कहते हैं, और फिर वो कहते हैं कि अब उनकी इच्छा क्या है। वो कहते हैं कि आपके जो दास हैं नारद मुनि, उन्होंने मुझ पर बहुत कृपा की, मुझे ज्ञान दिया, मैं तो गिर रहा था अंधे कुएं में, उन्होंने मुझे बचाया ज्ञान की रस्सी से, तो इसीलिए मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूं, मैं उनकी ही सेवा में रहना चाहता हूं। तो देखिए, प्रहलाद महाराज ये नहीं मांगते कि हाँ नरसिंह देव आप मुझे अपने साथ ले चलिए, आपकी सेवा में रहूंगा, वो कहते नहीं, मैं नारद मुनि की सेवा करूंगा। प्रभुपाद लिखते हैं ये नियम है, हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए। और ऐसे उदाहरण हम लोग कई जगह पे देखते हैं, रामायण में उदाहरण आता है जिस समय भगवान ने शबरी का उद्धार किया, शबरी से मिले, उसके बेर खाए, उस समय भगवान ने उनसे कहा कि वरदान मांगो, क्या चाहिए, और शबरी ने क्या मांगा? शबरी ने कहा मेरे गुरु जहां है मुझे वहां पहुंचा दीजिए, मैं उनकी सेवा करना चाहती हूं। शबरी ने यह नहीं कहा कि आपकी सतत सेवा करना चाहती। तो प्रहलाद महाराज भी यही कह रहे हैं कि मैं नारद मुनि की सेवा, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया है, उन्होंने मुझे बचाया है, इसलिए मैं बस उनकी सेवा करना चाहता हूं। तो फिर भगवान से ऐसे कहकर, और फिर भगवान का वो गुणगान करते हैं कि आप इस सारी सृष्टि की रचना करते हैं, तो पूरा कैसे सृष्टि की रचना करते हैं अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं। फिर कहते हैं कि ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए उनको कुछ पता नहीं था, अंधकार था चारों तरफ, वो कमल की डंडी में ऊपर नीचे जा रहे थे, कई वर्षों तक, सौ वर्षों तक ढूंढते रहे इस कमल का कहां उद्गम है, उनको कुछ नहीं मिला, थक गए, और फिर उन्होंने तपस्या की, कई वर्षों तक, सौ वर्षों तक तपस्या की, तब जाकर उनको सृष्टि करने की प्रेरणा मिली, शक्ति मिली आपके कारण। तो इस तरह ये आप ब्रह्मा जी को शक्ति देते हैं, हयग्रीव अवतार में जब आप आए तो आपने वेदों की रक्षा की, आपने मधु और कैटभ को मारा, इसलिए भगवान का एक नाम है मधु कैटभ हारी। तो आपने मधु और कैटब नाम के राक्षसों को मारा, वेदों की रक्षा की, ब्रह्मा जी को पुनः वेद स्थापित करके दिए, और इतना ही नहीं आपने कई अवतार लिए। आप पशु के रूप में आते हैं, आप मछली के रूप में आते हैं, आप कूर्म के रूप में आते हैं, आप कई अवतार लेते हैं। और फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं कलयुग में आप छन्न अवतार, छुपे हुए अवतार के रूप में आते हैं, इसीलिए आपको त्रियुगी कहा जाता है। त्रियुगी मतलब जो केवल तीन युगों में प्रकट होते हैं, कलयुग में नहीं आते। तो आपको त्रियुगी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कलयुग में आप अपने आप को भगवान के रूप में प्रकट नहीं करते, आप छुपा कर रखते हैं अपने आप को। इसीलिए जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने अपने आप को भगवान के रूप में प्रकट नहीं किया। अगर कोई उनको कहता भी था कि आप भगवान हैं तो अपने दोनों कान बंद कर लेते थे, विष्णु विष्णु विष्णु, ये क्या कह दिया, जीव कभी भगवान नहीं हो सकता, स्वीकार नहीं किया। लेकिन अपनी भगवत्ता दर्शाई, षडभुज रूप दर्शाया, कृष्ण रूप दर्शाया, बताया भक्तों को कि मैं ही भगवान हूं। लेकिन बहुत जैसे श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्पष्ट बता दिया, अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं ही सब चीजों का स्रोत हूं। लेकिन ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने नहीं किया, लेकिन फिर भी उनके भगवान होने का वर्णन तो शास्त्रों में है, भागवत में ही है, कृष्ण वर्णन तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जंती ही सुमेधसा, तो ये सब तो वर्णन है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं आप कलयुग में छन्न कलव, छन्न मतलब छुपे हुए, आप आते हैं लेकिन आप छुपे हुए अवतार के रूप में आते हैं, इसीलिए आपको त्रियुगी कहा जाता है। तो ऐसे प्रहलाद महाराज ने वर्णन किया और फिर वो कहने लगे कि मेरी इंद्रियां मुझे बहुत कष्ट दे रही हैं, मुझे खींच रही हैं, बड़ी आकर्षित करती हैं, इस तरह है कि जैसे मेरी कई पत्नियां हैं और हर पत्नी मुझे अपनी तरफ खींच रही है। ये उदाहरण आप कई बार हम लोग सुन चुके हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति की कई पत्नियां हो, घर में घुसे एक पत्नी उसका हाथ खींचे, दूसरी उसकी टांग खींचे, दूसरा गला खींचे, इधर आओ उधर आओ ये करो, व्यक्ति की क्या स्थिति होगी, अकेला व्यक्ति। इसी तरह हमारी स्थिति है अगर हम इंद्रियों को वश में नहीं रखते हैं, हमारी आंखें हमें कहीं खींचती हैं, हमारे कान हमें कहीं खींचते हैं, हमारी जिह्वा कहीं खींचती है, हमारी त्वचा कहीं खींचती है, हमारी नसिका कहीं खींचती है, हमारी दसों इंद्रियां हमें दस अलग अलग दिशाओं में खींचती हैं, कैसे हम लोग अपने आप को नियंत्रण रख पाते। तो प्रहलाद महाराज कहते मेरी तो ऐसी स्थिति, आप कृपा कीजिए, आपकी शरण लीजिए। तो ऐसे कई प्रार्थना करने के बाद अंत में अंतिम प्रार्थना वो नरसिंह देव से बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब तक छह प्रकार की भक्ति नहीं करता या छह प्रकार से आपकी सेवा नहीं करता तब तक वो परमहंसों की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता, तब तक वो आपको प्राप्त नहीं कर सकता। और क्या है ये छह प्रकार की भक्ति, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सबसे पहले हमें प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना ये बहुत आवश्यक है। जब हम भगवान के समक्ष आए, रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं कि जब भगवान के सामने खड़े हों तो उनको प्रार्थना अर्पण करना अनिवार्य है। वो ये नहीं कहते कि आपकी इच्छा हो तो कर देना प्रार्थना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, नहीं, इट इज अ मस्ट, प्रार्थना अर्पण करना ही चाहिए। तो क्या प्रार्थनाएं अर्पण करनी चाहिए हमें, क्या मांगना चाहिए, कुछ मांगना चाहिए, गुणगान करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सबसे अच्छा है आचार्यों की प्रार्थनाओं को दोहराना, बस जो आचार्यों ने कहा उसको दोहरा देना। जैसे प्रभुपाद इस तात्पर्य में भी कह रहे थे कि हमें केवल वैष्णवों के भजनों को गाना चाहिए। तो प्रार्थनाएं करनी है तो आचार्य, ये सबसे सरल है, हमें कुछ सोचना नहीं है कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं क्या नहीं मांग रहे, आचार्यों ने कहा हुआ उसको दोहरा दिया, आपके लिए बड़ा सुरक्षित मार्ग है। क्योंकि इससे क्या लाभ होगा, पहला लाभ ये होगा कि आप गलत कामना नहीं करोगे, क्योंकि आचार्य तो कभी गलत चीज कह नहीं सकते अपनी प्रार्थनाओं में, जैसे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। तो इसलिए आप कभी गलत प्रार्थना नहीं करोगे। दूसरी चीज, आपके ऊपर कृपा होगी क्योंकि आप उन भक्तों की प्रार्थना को दोहरा रहे हो तो भगवान प्रसन्न होंगे। और तीसरी चीज, उन भक्तों की शक्ति उन शब्दों में, उन प्रार्थनाओं में होती है। इसीलिए जब उस प्रार्थना को दोहराते हैं तो बड़ी शक्तिशाली हो जाती है। इसीलिए पूर्ववर्ती आचार्यों की प्रार्थना को दोहराना चाहिए। और अगर हमें कोई प्रार्थना याद नहीं आए भगवान के सामने खड़े होकर, जैसे हम लोग जब भगवान के दर्शन करते हैं तो ब्रह्म संहिता के श्लोकों को गाते हैं, ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं हैं तो हम लोग गाते हैं, गोविंद मादि पुरुषं तमहं भजामि। अगर समझिए हम दर्शन कर रहे हैं भगवान के, हमें कोई प्रार्थना याद नहीं आती है तो कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र कह देना चाहिए, वो भी बहुत सुंदर प्रार्थना। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं छह चीजों में से पहली चीज हमें प्रार्थना अर्पण करनी चाहिए, दूसरी चीज अपने कार्यों के सारे फल भगवान को अर्पण करने चाहिए। ये महत्वपूर्ण है कि हम जो भी कार्य करें उसका फल भगवान को अर्पण कर, अपने लिए नहीं, क्योंकि अगर हम फल अपने लिए रखेंगे तो बंधन का कारण होगा। फल भगवान को दे देंगे तो मुक्ति हो जाएगी। जब आपने फल लिया ही नहीं, फल भगवान को अर्पण कर दिया, तो फिर आपका बंधन कैसा। तो ये दूसरी चीज हमें करनी चाहिए कि हम भगवान को अपने सारे कार्यों के फल अर्पण करें। तीसरी चीज प्रहलाद महाराज कहते हैं आपकी आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। तो जैसे आराधना की पद्धतियां हैं, पूजा में बहुत कुछ आता है, भगवान को भोग अर्पण करना, भगवान का श्रृंगार करना, भगवान की आरती करना, भगवान के लिए हार बनाना, भगवान के लिए भोग बनाना, ये सब पूजा, भगवान के मंदिर को साफ करना, ये सब पूजा की आराधना हमें करनी चाहिए, भगवान के नाम का प्रचार करना। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि तीसरी चीज हमें आपकी पूजा करनी चाहिए। चौथी चीज वो बताते हैं कि हमें भगवान को सारे जो हमारे कार्य हैं वो हमें केवल भगवान के लिए करने चाहिए। हम भगवान के लिए कार्य करें, किसी और चीज के लिए नहीं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी भौतिक चीज को प्राप्त करने के लिए नहीं, केवल भगवान के लिए कार्य करें। तो हमारे कार्य हैं, क्या उद्देश्य है, हम भगवान के लिए कर रहे हैं, बस अपने लिए नहीं कर रहे। अपने लिए जीना बंद कीजिए, ये प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। बहुत हो गया अपने लिए जी ली, जीवन भर हम लोग केवल अपने लिए जीते, मुझे कैसे सुख मिले। भक्ति में आकर भी हम यही चाहते, मुझे कैसे सुख मिले, भक्ति का सुख मुझे कैसे मिले, ये भी अपने लिए जीना। इसीलिए अपने लिए जीना बंद कीजिए, भगवान के लिए जीना प्रारंभ कीजिए, ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। तो ये चार, और पांचवी चीज वो कहते हैं कि हमें सतत भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का सतत स्मरण होना चाहिए, हर समय उनको याद रखना। और भगवान को याद रखना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, भगवान को याद रख सकते, कैसे याद कर सकते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं रसो हम अपसु कौंते या प्रभास्मी शशि सूर्य योग, पानी पीते हैं, पानी पीते पीते स्मरण कीजिए पानी का स्वाद श्री कृष्ण है। हम सूर्य को देखते हैं, सूर्य की रोशनी देखते देखते ही याद करें प्रभास्मी शशि सूर्य योग, सूर्य की जो किरण है ये भगवान है। कितना आसान है भगवान को स्मरण करना। कभी कभी हम लोग कोई बहुत सुंदर चीज देख ले, कोई सुंदर युवती देख लेते हैं, बड़ा ध्यान आकर्षण हो जाता है, तो कई समय तक याद रहता है कितनी सुंदर थी। या किसी फिल्म की हीरोइन इत्यादि को आप लोग देखते हो, वो लोग सुंदर नहीं होते हैं, वो लोग तो केवल चेहरे पर बड़ा कुछ लगा लगा के फिर इतनी तेज लाइट मारी जाती है चेहरे पर, तब सुंदर होते हैं वो लोग। कि मान लीजिए कोई सुंदर चीज देख ली, अपनी सुंदर युवती देख ली, तो फिर कैसे भगवान का स्मरण होगा। तब भी भगवान का स्मरण हो सकता है जब हम सुंदर चीज को देखें, सुंदर वस्तु को देखें, सुंदर व्यक्ति को देखें, तो हमारे मन में आना चाहिए कि ये सुंदरता भगवान की सुंदरता का अंश मात्र है, भगवान कितने सुंदर होंगे, जिसने इस सुंदरता को बनाया वो कितना सुंदर होगा, ये हमें सोचना चाहिए। तो जब हम लोग सुंदर चीज को देखें, सुंदरता की ओर आकर्षित हों, तब हमें इसको ऐसे मन में विचार लाने चाहिए कि भगवान कितने सुंदर हैं। तो हर चीज को देखकर हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। बड़ा सरल है भगवान को स्मरण करना, हर अवस्था में, कष्टों में भी भगवान को स्मरण कर सकते हैं। तो ऐसे, और छठी चीज अंत में प्रहलाद महाराज बताते हैं कि हमें भगवान के विषय में सुनना चाहिए, उनके गुणगान को सुनना चाहिए। तो ये वो कहते हैं कि ये छह चीजें किए बिना आपको प्राप्त नहीं किया जा सकता, जीवन का उद्देश्य प्राप्त नहीं होता। तो इसीलिए हमें सतत भगवान की भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, अपने कर्मों के फल भगवान को अर्पण करने चाहिए, भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए, सारे कार्य भगवान के लिए करने चाहिए, सतत उनका स्मरण करना चाहिए और उनका गुणगान हमें सुनना चाहिए, आंखें खोलकर, कान भी खुले रखकर उनका श्रवण करना चाहिए। तो ऐसे प्रहलाद महाराज ने अपनी प्रार्थनाओं को समाप्त किया और फिर नारद मुनि कहते हैं कि फिर भगवान उनसे बोलने लगे और भगवान नरसिंह देव ने उनसे कहा कि प्रहलाद, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं तुमसे, मांगो क्या मांगना। भगवान ने अब प्रहलाद से कहा कि तुम कुछ मांगो, क्योंकि तुमने कुछ मांगा नहीं प्रार्थनाओं में, तुम केवल मेरा गुणगान कर रहे हो, जीव कैसे मुक्त हो रहा है ये वो, लेकिन कुछ मांगो अभी, मैं बहुत प्रसन्न हूं। और फिर भगवान ने कहा कि मैं ही सारे लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करता हूं, जो भी लोग इच्छा करते हैं उनको पूर्ण करने वाला मैं ही हूं, इसीलिए जो तुम्हारी इच्छा हो तुम मांगो। और फिर प्रहलाद महाराज के मांगने से पहले ही भगवान इतने खुश थे प्रहलाद महाराज से कि उन्होंने एक वरदान उनको दे दिया कि तुम्हारी बहुत लंबी आयु होगी, पहले ही दे दिया। प्रहलाद ने कहा नहीं कि मैं लंबी आयु चाहता हूं, भगवान इतने खुश है कि कुछ देना चाहते थे तो रुके नहीं प्रहलाद महाराज के मांगने तक। देखिए कभी कभी ऐसा होता ना कि कोई व्यक्ति देने के लिए आतुर है और सामने वाला जरा ठंडा मांग रहा है, नहीं सोच रहा है, तो वो खुद ही दे देता है, ये लो ले जाओ। तो ऐसे नरसिंह देव बड़े आतुर हैं देने के लिए, प्रहलाद को कहा मांगो, और प्रहलाद अभी कुछ बोले नहीं, कुछ सोच रहे हैं कैसे मांगू नहीं मांगू, अभी ये सोच रहे कि भगवान ने दे दिया तुम्हारी लंबी आयु होगी, अब और मांगो जो मांगना। तो नारद मुनि कहते हैं कि हालांकि भगवान ने प्रहलाद महाराज को इतना प्रलोभन दिया, ये प्रलोभन है ना, कि भगवान कह रहे हैं मैं सब दे सकता हूं, जो चाहिए वो मांगो, अब ना जो चाहिए वो मांग सकते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज फिर भी कुछ मांगने के इच्छुक नहीं। तो उन्होंने क्या कहा ये अगले अध्याय में नारद मुनि वर्णन करने वाले हैं, इसको हम कल सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा किसी